Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Tat Sat. Tav Tattvam Na Janami. Kidrushosi Maheshwara, Yadrushosi Mahadeva, Tadrushaya Namo Nama, Yovasau, Soaham Yajam. Om Shanti. Mandukya Upanishad अथर्ववेद से इसका संबंध है और उपनिषद परंपरा अनुसार शांति पाठ इस उपनिषद का शांति पाठ भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा कल थोड़ा इस पर विचार किया था कि इसका अर्थ ये है कि हम प्रयत्न पूर्वक दृढ़ संकल्प के साथ प्रयत्न करेंगे कि हमारे कान ऐसे शब्दों को सुने जो मन को पवित्र एवं प्रसन्न कर दे, हमारी आंखें ऐसे दृश्यों को देखें जो हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को पवित्र कर दे और दुख रहित अर्थात प्रसन्न कर दे। इसके लिए प्रकृति की सभी शक्तियों का साक्ष्य लेकर इंद्र, बृहस्पति, स्तारिक्ष ये सब प्रकृति की शक्तियां हैं जो प्रकृति में विशाल रूप से और हमारे अपने शरीर में अनुरूप से इन्हीं शक्तियों का एक हिस्सा है। जो प्रकृति का संचालक है वही हमारे शरीर का भी संचालक। हमारे और प्रकृति के बीच में सामंजस्य बना रहे, एकता बनी रहे, यही इस शांति पाठ का उद्देश्य है, अभिप्राय। उपनिषद को शुरू करने से पूर्व गौड़पादाचार्य जी ने अपना मंगलाचरण किया। ये कल भी आपसे एक बात कही थी कि ये उपनिषद कलेवर में अन्य उपनिषदों से छोटी, इसमें कुल 12 मंत्र हैं, लेकिन इस पर श्री गौड़पादाचार्य जी ने कारिकाएं लिखी। कारिकाओं का मतलब है इन 12 श्लोकों का विस्तार किया और 12 श्लोकों का विस्तार उन्होंने 215 श्लोक लिखे और इन श्लोकों को जो मूल में 12 थे विषय वस्तु की दृष्टि से 4 भागों में बांट दिया। उसको प्रकरण कहते हैं। इसका पहला भाग उसको आगम प्रकरण कहा गया, दूसरा भाग उसको वैतथ्य प्रकरण कहा गया है, तीसरा इसका भाग है उसको अद्वैत प्रकरण कहा गया और चौथे भाग को आलात शांति प्रकरण कहते। 12 श्लोकों को विषय वस्तु की दृष्टि से चार भागों में बांट दिया गया और एक एक भाग पर फिर उन्होंने कारिकाएं अर्थात श्लोकों में उसके अर्थों का विस्तार किया और शंकराचार्य जी ने उन कारिकाओं पर अपने भाष्य अपना विस्तार किया। ये ग्रंथ या ये उपनिषद इसीलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि इसमें गौड़पादाचार्य जी की कारिकाएं हैं, मूल श्रुतियां भी हैं और शंकराचार्य जी का इस पर भाष्य भी है। और जो वेदांत परंपरा है, जो वेदांत संप्रदाय है, उसका ये आधारभूत ग्रंथ है, ये मूल ग्रंथ है जो वेदांत का प्रतिपादन करता है। ऐसा कह सकते हैं कि वेदांत परंपरा संप्रदाय के रूप में इसी ग्रंथ से शुरू होती, इसी उपनिषद से शुरू होती। वैसे तो कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं है जो आदि ना हो। जब से संसार बना सभी सिद्धांत तभी से बने, वेदांत भी तभी से ही है। लेकिन संप्रदाय के रूप में, एक परंपरा के रूप में, क्रमबद्ध दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से इसका प्रारंभ श्री शंकराचार्य जी से होता है अद्वैत वेदांत का। और उस अद्वैत वेदांत का ये आधारभूत ग्रंथ है। इस ग्रंथ के मंगलाचरण में भाष्यकार अर्थात शंकराचार्य जी मंगलाचरण के रूप में लिखते हैं, प्रज्ञानम अंशु प्रतानई स्थिर चर निकर व्यापी भीर व्याप्य लोका। इसमें शुरू में ही एक शब्द आया प्रज्ञान। प्रज्ञान का मतलब होता है प्रकृष्ट ज्ञान, वो ज्ञान जिससे बढ़कर, जिससे और आगे कोई दूसरा ज्ञान ना। ज्ञान, संज्ञान, विज्ञान, अज्ञान और प्रज्ञान। प्रज्ञान का संक्षेप में और अंतम अर्थ ये है कि संसार की कोई भी चीज ऐसी नहीं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई ना। आप जो कुछ भी देख रहे हैं, जहां तक भी आप सोच सकते हैं, ये सब वस्तुएं, ये सब स्थान और ये सब विचार अंतर्नियोजित है, अन्योन्य आश्रित है, अर्थात इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट। इसको प्रज्ञान कहते। प्रज्ञान का अर्थ होता है कि मैं ये पृथ्वी, ये कुर्सी जिस पर बैठे हुए हैं, चींटी, हाथी, समुद्र, चंद्रमा, सब एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर एक की भी हानि हुई तो सब की हानि, एक का भी लाभ सभी का लाभ। सुखी तब ही रह सकते हैं जब सारे ही सुखी रहे। जहां सब जुड़े हुए होते हैं आपस में, वहां ये संभव नहीं होता कि बाकी दुखी रह जाए और मैं सुखी रह जाऊं। देखो अगर कुर्सी भी टूटी हुई है तो आपको भी वो आराम से नहीं बैठने देगी। भले ही हमारी समझ में ये बात ना आए लेकिन मूक भाषा में वो भी बतला रही है कि सुखी रहना है तो मुझे भी संभाल कर रखो। तो कोई भी चीज संसार की ऐसी नहीं है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई ना। यही प्रज्ञान है। ये मैंने आपको प्रज्ञान का अर्थ बतलाया लेकिन इसका अनुभव शब्दों के माध्यम से, जिसने इसका अनुभव किया वो शब्दों के माध्यम से बतला नहीं पाया। देखो शब्द उसे समझा नहीं सकते लेकिन शब्द आपको वह पहुंचा सकते हैं जहां ये अनुभव हो। समझाना एक दूसरी बात है और पहुंचाना एक दूसरी बात। कोई भी शब्द आपको उस परम अनुभव को समझा नहीं पाएगा लेकिन हर शब्द अगर आप चाहो तो आपको उसके नजदीक पहुंचा देगा। शब्द का मनन करते हुए जीवन में उन सिद्धांतों को अपनाते हुए जो हमारी बुद्धि में प्रखरता, मन में प्रसन्नता, चित्त में प्रकाश लाते हुए उसकी ओर ले जाए, समग्रता की ओर, शब्द इतना काम कर सकते। कुंभ कूप तक पहुंचे इतना कर सकती है डोर, रस्सी इतना कर सकती है कि घड़े को कुएं में लटका के पानी तक पहुंचा सकती। रस्सी और कोई काम नहीं कर सकती, घड़े को पानी तक पहुंचा दे, आगे उसमें पानी भर जाए, ये जिसके हाथ में रस्सी है या घड़े की बनावट पर निर्भर करता है। जब कभी कुएं होते थे जिसमें से पानी खींचते थे, अगर किसी का अनुभव हो तो वो जानते हैं कि हम कुएं में रस्सी गले में बांध के घड़े के लटका देते, घड़ा पानी तक पहुंच जाता था। कई घड़े ऐसे होते थे जाते ही पानी में डूबते भर जाते थे और उनको खींच लेते थे। कुछ घड़े ऐसे भी होते थे कि वो पानी भरने वाला रस्सी को जो जो करके तो झटके देता था जिससे उछल कूद करके दो चार बार में वो घड़ा भर जाता था। और कई घड़े ही ऐसे होते थे कि वो रहते ही उल्टे थे, पानी पर उल्टे ही पड़े रहते थे, कितना उनको पटक लो कितना उनको कर लो वो सीधे होते ही नहीं थे। तो इस तरह से रस्सी तो पानी तक पहुंचा सकती है, अब पानी में घड़ा डूबे आ जाए ऊपर भर के ये बात रस्सी नहीं कर सकती। तो शब्द हमें उसके नजदीक पहुंचा सकते हैं, उसका अनुभव नहीं करवा सकते। अनुभव तो गुरु कोशिश करते हैं, जैसे डोर को झटका देते हैं तो शिष्य को भी झटका देते हैं कि उसमें डूब जाए। कोई कोई डूब भी जाते हैं, जहां पर कहीं ठाकुर रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जैसे मिल जाए तो घड़े डूब भी जाते और कहीं कहीं नहीं भी डूबते। तो शब्द आपको केवल वहां तक पहुंचा सकते हैं, उसको समझा नहीं सकते। इसीलिए वहां तक पहुंचे तो कई है शब्दों के माध्यम से, शब्दों की व्याख्या करने वाले, लिखने वाले, बोलने वाले इतने बढ़िया बढ़िया हुए हैं कि आप उनका एक एक वाक्य पढ़े तो मंत्रमुग्ध हो जाए। उसी में ही रहते। तो ये वहां तक पहुंचे तो है, लेकर उसको जाना नहीं। वो अनुभव जो प्रज्ञान शब्द से मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रज्ञान का अर्थ ही इतना है कि ये बात हमारे जीवन में अनुभव में आ जाए कि जो कुछ भी आप देख रहे हो ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग हो। वैसे तो देखने में ये लगेगा कि एक इंसान में और एक चींटी में, एक हाथी में, एक बंदर में और चंद्रमा में कोई आपस में संबंध नहीं, ये सब अलग अलग है, क्योंकि इनके नाम भी अलग अलग है और इनके काम भी अलग अलग है, इनके गुण भी अलग अलग। नाम, धाम, गुण, ये सब कुछ गिनना ये बुद्धि का काम है। बुद्धि इसके बिना किसी बात को पकड़ नहीं सकती। जब तक बुद्धि रहती है तब तक विभिन्नता रहती ही है। एक बात थोड़ी सी अगर आप समझ लें तो शायद जीवन में काफी सुगमता हो जाए। विभिन्नता और पृथकता में अंतर अगर आप हर समय ध्यान में रखें तो जीवन की समस्याएं तुरंत सुलझ जाती हैं, एक भी समस्या नहीं रहेगी। विविधता या विभिन्नता और पृथकता, ये दो अलग अलग चीजें, डिस्टिंक्शन एंड डिफरेंस। डिफरेंस और चीज है, डिस्टिंक्शन और चीज। विविधता का मतलब होता है वैरायटी, विभिन्नता का मतलब होता है अलग अलग चीजें, विरोधी चीजें। विविधता और विभिन्नता, आप एक बाग में चले जाओ तो तरह तरह के फूल हैं, उसको विविधता कहते हैं, विभिन्नता नहीं है। फूल एक दूसरे के विरोधी नहीं है, पृथक नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं है। तो विविधता को जब हम पृथकता बना देते, राजनीति इसी पर टिकी होती है कि विविधता को पृथकता में बदल दे। राजनीति चलेगी ही इस बात पर। विविधता का मतलब है वैरायटी। एक शोरूम में जाओ आप, वहां तरह तरह की चीजें पड़ी हुई हो, कहीं गुड़िया पड़ी हुई हो, कहीं शेर बना हुआ पड़ा हुआ हो, कहीं कोई मृदंग बजा रहा है, कहीं कोई नृत्य कर रहा है, खिलौनों का शोरूम हो और उसमें खिलौने हो, तो जितनी वैरायटी होगी उतना ही शोरूम बढ़िया होता है, उतना ही अच्छा होता है। वो जितने खिलौने हैं वो पृथक नहीं है, विविधता है उनमें, उनमें विभिन्नता है। कोई गुजराती है, कोई मराठी है, एक पंजाबी है, एक सिंधी है, एक गुजराती है। ये पृथक नहीं है, विभिन्न है। ये विविधता है, पृथकता नहीं, अलग नहीं है एक दूसरे से, है एक ही तत्व के सब, सभी के सभी पंचभूतों से बने हुए हैं। कोई भी तो ऐसा नहीं है जो पृथ्वी से, जल से, वायु से, अग्नि से, इनसे ना बना हुआ। लेकिन जो विभिन्नता होती है वो स्थान के कारण, परिस्थितियों के कारण, इसी को देश काल वस्तु कहते हैं। जो रेगस्थान में पैदा हो जाएगा और जो व्यक्ति बद्रीनाथ केदारनाथ में पैदा होगा जहां बर्फ ही बर्फ रहती है और एक वहां पैदा हो गया जहां गर्मी ही गर्मी है हमेशा, कोई समुद्र के किनारे पैदा हुए हैं, कोई मैदान में हुए हैं, कोई पहाड़, तो जो जहां पैदा हुआ वहां का खाना पीना रहना पहनना ये उसकी क्लाइमेट के कारण है। लेकिन लोग स्वार्थ इस बात में है लोगों का कि ये जो क्लाइमेट के कारण है इसको परमानेंट बना करके ये हमारी ड्रेस है, ये हमारी वेशभूषा है, यही हमारी कल्चर है और हमारी इस कल्चर से बढ़कर कोई नहीं। फिर गीत बन जाएंगे कि राजस्थानियों से उत्तम और कोई नहीं, सिंधी अपना गीत बना लेगा कि सिंध प्रांत से बढ़ के और क्या है, पंजाबी ने अपना बना लिया कि पंजाब से बढ़ के इसकी तो बस वो बात रोटी और मक्की का रोटी और ये साग, इससे बढ़ के कोई नहीं, एक ने अपना एक जितने थे, क्योंकि इसमें लोगों का स्वार्थ है, राजनीति इसी पर टिकी हुई कि हम उससे बढ़िया है, हमारी कल्चर बढ़िया है, इसमें दूसरी कोई ना आए, दूसरे से बात नहीं करनी, उससे शादी नहीं करनी, उससे ऐसा नहीं करना। आज जो कभी कभी अखबारों में रोज पढ़ने को मिलता है कोई जिसको ऑनर के लिए कह रहे हैं कि वहां शादी हुई तो इसको मार दिया, उसने कर दिया, वो कर दिया, ऐसे वे करते हुए फिर आप उपनिषदों के प्यार की बात करें, प्रज्ञान की बात करें कि आधारभूत सब एकता है, तो वो समझ में आ जाना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि इस बात को पहले तो समझना मुश्किल है, समझ में आ भी जाए तो इसमें स्वार्थ की पूर्ति नहीं, इस बात में किसी का क्या स्वार्थ पूरा होगा कि सब एक ही है। अगर इतना कह देंगे तो मेरा कोई लाभ नहीं है, जब तक मैं अपने संप्रदाय को आपसे अलग करके नहीं बतलाऊंगा मेरा महत्व तो नहीं रहेगा। अपने संप्रदाय का नेता बनने के लिए, अपने संप्रदाय में सम्मानित होने के लिए मुझे कुछ ना कुछ अलगाव करना ही पड़ेगा। ईश्वर एक है, आप इस बात को कई बार आपने सुना, लेकिन जो बात हर समय याद रखनी चाहिए वही हर समय भूली हुई रहती। मैं सोचता हूं जब से भी ये आश्रम बने हैं अगर तब से लेकर आज तक दोहराया जाए तो कम से कम 1 करोड़ बार से भी अधिक ये बात दोहराई गई होगी कि एको हम सद्विप्रा बहुविदिश्य। वो एक ही है, सत एक ही है, लेकिन उसको विभिन्न तरह से कहते। या ब्रह्म की भी ये बात आपने सुनी होगी कई बार कि एको हम बहुस्या, उसके मन में आया मैं एक हूं, मैं बहुत हो जाऊं। अब बहुत हो जाऊं का मतलब ये नहीं है कि विरोधी बहुत सारे बन जाऊं, एक ही तत्व जब अनेक रूप में जाएगा तो तभी नाटक होगा, तभी लीला होगी। फर्ज करो वो एक एक ही रहता, बनता भी एक जैसा, एक जैसा का मतलब हम सब एक जैसे होते, शक्ल से भी अकल से भी हर तरह से हम एक होते तो 2 दिन जीना मुश्किल हो जाता, पता नहीं कब के मर गए होते। ये जो जिंदा है तो ये विभिन्नता को देखकर, ये जो पृथकता नहीं है, अलगाव नहीं है, ये विभिन्नता है, किसी की शक्ल किसी तरह की या किसी की किसी तरह की या किसी की किसी तरह की, इन्हीं को देख के तो सारी जो कुछ भी हो रहा है, सारी प्रगति, सारा साहित्य, सारा अध्यात्म इसी पर ही टिका हुआ है। अगर तो आप इस बात को ध्यान में रख लें कि ये विभिन्नता है, पृथकता नहीं, तो फिर ये लीला, इसको कहते हैं लीला हो रही, फिर तो लीला ही लीला है, दुख नाम की कहीं कोई चीज है नहीं, नाटक हो रहा है देखो खूब आनंद लो, और संभव हो तो नाटक में आप डबल काम कर सकते हैं कि आप नाटक के पात्र भी हैं और दर्शक भी, दोनों का साथ में एक्टिंग भी ठीक सी करो और साथ में देखते भी जाओ, अपनी एक्टिंग को भी दूसरों की एक्टिंग को भी। इसके लिए सावधान रहो। अगर ऐसा करते हो तो फिर झगड़े का, लड़ाई का, क्रोध का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। करते हुए भी मतलब हीरो और विलन आपस में लड़ भी रहे हो, दोनों को पता होता है कि ये लड़ाई कुछ नहीं है, जितना बढ़िया वैसे वो एक्टिंग करेंगे इनाम उतना ज्यादा मिलेगा। कई बार देखते हैं कि विलन को राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा, वो सचमुच का विलन नहीं है, वो बहुत ही बाहोश होश को कायम रखते हुए उसने नाटक को किया। तो ये ईश्वर लीला कर रहा है। ईश्वर एक वो तत्व है जो विभिन्नता में बदल गया, प्रकट हुआ तो अनेक तरह का बन गया, और जब वो अव्यक्त होगा तो फिर एक ही है, फिर वो अनेक नहीं है, अंततः फिर एक का एक ही। इसी उपनिषद में इस बात को समझाया भी गया है कि किस तरह से जागृत का स्वप्न में, स्वप्न का सुषुप्ति में विलय करो, सुषुप्ति का तुरीय में, अर्थात अंततः तुरीय अवस्था में हम सब एक ही है। देखो अपने आप में भी आप वैसे ही कह रहे हो कि मैं एक हूं। कभी आप अगर शब्दों पर चले जाए को आप ही अपने आप में किसी के भाई हो, किसी के पति हो, किसी के मित्र हो, किसी के पुत्र हो, किसी के बाप हो, किसी के चाचा हो, किसी के मामा हो, किसी के भांजा। अगर वैसे कहा जाए कि ये मामा भी है, ये भांजा भी है, ये पुत्र भी है, ये पिता भी है, ये बेटा भी है, ये बाप भी, तो ये बात समझ में नहीं आएगी, कहेंगे पागल जैसी बात कर रहा है कि ये बाप भी है, ये बेटा भी। लेकिन आप जब स्वयं अपने आप में सोचोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये बात ठीक है, क्योंकि मैं स्वयं में किसी का बाप भी हूं, किसी का बेटा भी हूं, किसी का भाई भी हूं, किसी का वो भी। अगर इस बात को वैसे कहा जाए, देखो ये तो आप ही एक इतने रूप है आपके कि कोई उसकी हद नहीं, क्या क्या नहीं है। आप अपने पर ही आप अगर नजर रख ले तो आपको ये नाटक का रहस्य समझ में आ जाए कि एक ही अनेक बना हुआ है। मामा भी वही बना हुआ है, भांजा भी वही बना हुआ है, मित्र भी वही बना हुआ है, पति भी वही बना हुआ है। तो आप अकेले ही एक अनेक बन सकते हो, तो जिसकी हम बात कर सकते हैं वो क्या नहीं बन सकते। उस परम सत्ता के लिए क्या है ऐसा जिसको हम दुर्लभ कहें। लेकिन बात यह है कि ज्ञान में नहीं, प्रज्ञान में। तो प्रज्ञान का मतलब है आधारभूत एकता, एक ही तत्व। जैसे कहते एक नूर से सब जग उपजे, कौन पले कौन मंदे, एक ही ज्योति से सारे उपजे हुए हैं, इसमें अच्छे और बुरे की कोई बात नहीं है। नाटक में अच्छे और बुरे नहीं होते, नाटक पूरा ही तब होता है जब उसमें एक हास्य रस वाला पात्र भी हो, एक विलन भी हो, एक हीरो भी हो, एक कैसा भी हो, सब मिलजुल के ही तो नाटक को बनाएगी।